ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद आठवां अध्याय गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का आविर्भाव। सह सोहं यणां चुल्ल सुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से आत्यंतिक क्लेशों में उलझे हुए लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण आरंभ करता हूं, जिसे स्वयं भगवान ने महर्षियों को सुनाया था। तात्पर्य, महर्षि मैत्रेय ने श्रीमद् भागवत सुनाने का प्रस्ताव किया क्योंकि वह मानव समाज की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूप से संकलित किया गया है, जो गुरु परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अवतरित होता आया है। केवल वही व्यक्ति जो भाग्यशाली है भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्तों के सत्संग में श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अपराशक्ति के प्रभाव के अधीन जीवगण केवल क्षुद्र लौकिक सुख के लिए अनेकानेक कठिनाइयों के बंधन में फंस जाते हैं। निहितार्थ का ज्ञान न होने के कारण वे सकाम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इस मिथ्या धारणा के वशीभूत होकर कि शरीर ही आत्मा है, जीवगण मूर्खतावश अपने को मिथ्या आसक्तियों से संबंध कर लेते हैं। जीवगण यह सोचते हैं कि वे भौतिक अथवा लौकिक परिकर के साथ चिरकाल तक संबंध रख सकते हैं। जीवन की यह स्थूल मिथ्या अवधारणा इतनी शक्तिशाली होती है कि भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के अधीन मनुष्य एक जीवन के बाद दूसरे जीवन में निरंतर यातनाएं सहता रहता है। यदि कोई व्यक्ति भागवत ग्रंथ और साथ ही साथ भागवत व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली मनुष्य लौकिक जटिलताओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैत्रेय मुनि संसार के दुखी जनों के लिए अनुकंपा से प्रेरित होकर सर्वप्रथम और अंतिम रूप से श्रीमद् भागवत की कथा कहने का प्रस्ताव करते हैं। अनुवाद दोहराइए। अब मैं हरे कृष्णा। तो जब विदुर ऋषि ने इतने सारे प्रश्न किए हैं मैत्रेय मुनि को, तो मैत्रेय मुनि अब प्रश्नों का जवाब देने शुरू कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं ये उन लोगों के लिए कर रहा हूं, क्षुल्ल सुखाय दुखम, उन लोगों के लिए जो बहुत कम सुख के लिए इतना दुख उठा रहे हैं। ये बहुत महत्व की बात है। पहली बात तो ये है कि संसार में जो सुख मिलता है वो क्षुल्ल सुख है, चपल सुख लब लागे रे, चपल सुख क्षणिक सुख होता है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये संसार का सुख जो है क्षणभंगुर होता है, बहुत कम होता है। इसकी शुरुआत होती है और इसका अंत भी होता है। तो ऐसे चपल सुख के पीछे लोग लगते हैं। और दुख की बात तो ये है कि इतना कम सुख तो है ही, लेकिन इस कम सुख को प्राप्त करने के लिए लोगों को इतना दुख सहन करना पड़ता है, इतने सुख के लिए इतना दुख। तो मैत्रेय मुनि ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों पर कृपा कर रहे हैं और सोचते हैं कि क्यों व्यर्थ में ही इतना परिश्रम करके चपल सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो कहते हैं कि मैं ये श्रीमद् भागवत प्रस्तुत करना चाहता हूं। महद्गतानां विरमाय तस्य। तो विरमाय का मतलब है ये दुख को कम करने के लिए। मैं शुरू में और अंत में भी यही श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रवर्तये, अंत्य और प्रवर्तये, दोनों अंत में भी और शुरुआत में भी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जो साक्षात भगवान ऋषिभ्यः, जो साक्षात भगवान ने ऋषियों के प्रति कहा था। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। बताया जाता है कि 18 प्रकार के पुराण होते हैं, महापुराण। वैसे तो 108 हैं, लेकिन जो मुख्य पुराण हैं वो 18 होते हैं और इनका विभाजन किया गया है 3 गुणों के हिसाब से। जो 6 पुराण हैं सत्वगुण में हैं, 6 पुराण रजगुण में हैं और 6 पुराण तमगुण में हैं। ये 6 पुराण हैं जो सत्वगुण में हैं, उनमें भागवत पुराण सबसे प्रमुख माना जाता है। वास्तव में श्रीमद् भागवत सात्विक पुराण भी नहीं है, ये तो एक परमहंस संहिता है। ये विशुद्ध सत्व का पुराण है। भागवत पुराण को 3 गुणों से कोई संबंध नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी इसे यह सत्व गुण के भाग में रखा गया है। परमहंस संहिता अमलम पुराणम, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये अमल पुराण है। अर्थात इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं है, कोई भौतिक मल नहीं है इसमें। ये बिल्कुल शुद्ध है, भौतिक गुणों का प्रभाव इस पर बिल्कुल नहीं है। ये है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत यहां बता रहे हैं विदुर जी कि साक्षात भगवान ऋषिभ्यः, कि भगवान ने ये ऋषियों को बताया था ये ज्ञान। तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये ब्रह्मा जी को यही ज्ञान जो है भगवान ने हृदय के माध्यम से दिया हुआ था और इस प्रकार से ये परंपरा में चलते आ रहा है। चार प्रकार के वैष्णव संप्रदाय हैं और इन चार ही संप्रदायों में भगवान ने ही आरंभ किया है ये भागवत का ज्ञान और इस प्रकार से परंपरा में यही भागवत का ज्ञान चलते आ रहा है। कैसे चलते आ रहा है, प्रभुपाद जी भी इसके बारे में दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक ऊंचे वृक्ष एक डाल के ऊंचे वृक्ष पर अरे वृक्ष के ऊंचे डाले पर एक जब फल होता है तो ऐसा कि कोई उठाकर उसे दूसरे जो नीचे जो डाली है उस पर दे देता है, फिर तो वहां जो नीचे की डाली है उस पर उठाकर और दूसरे नीचे जो डाली है उस पर दे देता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का फल जो है वो चलते आ रहा है। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो फल ऊंचे डाले से टूट कर जो है नीचे जमीन पर गिर जाता है और वहां टूट जाता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि श्रीमद् भागवत का जो अत्यंत रसमय जो फल है वो धीरे 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 से केयरफुली जो है बहुत ही ध्यान से परंपरा में गुरु से शिष्य इस प्रकार से चलते आ रहा है। यह है श्रीमद् भागवत। इसका रस का पान जो है वो सभी के लिए सभी को करना है और जैसे जैसे एक डाली से नीचे दूसरी डाली तक आता है ये और भी ज्यादा इसके अंदर रस बढ़ जाता है। इसकी एक खूबी यह है, श्रीमद् भागवत की खूबी यह है कि जैसे परंपरा में वो बढ़ता जाता है इसका रस जो है वो बढ़ता जाता है। निगम कल्प तरोर दलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम विगत भागवतम रसमालयम अहो मुहूर्सिका भुवि भावुकाः। तीसरे ही श्लोक में श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है कि ये सब ऋषि मुनियों के लिए बताया गया है जो भावुक हैं, जो बहुत ये भाव में लगे हुए हैं और जो बहुत बुद्धिमान हैं, जो सोच विचार में हमेशा रहते हैं परम सत्य के बारे में, तो उनको भी उनके लिए ये बताया गया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये जो वेदों का वेद है इनको निगम बताया गया है। निगम कल्प तरोर, कल्प तरोर अर्थात वो वृक्ष जो सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, कल्प वृक्ष, और उनमें से प्रमुख है ये श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत सारे वेदों में प्रमुख फल क्यों है, शास्त्र क्यों है, गलितम फलम। अगर हम एक वृक्ष वेदों को एक वृक्ष माने कल्प करो तो इनमें जो सबसे मीठा पका हुआ जो फल है वो है श्रीमद् भागवत गलितम फलम। और सबसे पका हुआ है श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो सबसे पका हुआ फल जो है और ये बहुत मीठा है। ये सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से आया हुआ है इसलिए इसका रस जो है और भी बढ़ा है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। अब सुख इसका मतलब है एक तोता, लेकिन सुख का मतलब ये भी है सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी एक ऐसे पक्षी के समान है, ऐसे तोते के समान है जो पहले श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत को और फिर श्रीमद् भागवत को उच्चारण करते हैं, और सुनने के बाद जब सुखदेव गोस्वामी उसका उच्चारण करते हैं तो इसमें रस बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे जब एक फल को एक तोता चख लेता है तो वो फल का स्वाद बढ़ जाता है, वो फल और भी मीठा हो जाता है। तो इसीलिए जैसे ये फल और तोते इसको चखते रहते हैं वैसे ये फल मीठा होता रहता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जैसे जैसे परंपरा में इसको दिया जाता है वैसे वैसे ये बहुत मीठा होते रहता है, इसका रस बढ़ते रहता है, इसका स्वाद बढ़ते रहता है,
इसलिए बताया जाता है पिबत भागवतम रसमालयम कि आप सभी पीजिए ये श्रीमद भागवत के रस को, इसका रसपान आप सभी कीजिए। तो ये है श्रीमद भागवत जो इस वक्त यही मैत्री मुनि जो है इसको आगे प्रस्तुत करने जा रहे हैं और यहां बता रहे हैं कि श्रीमद भागवत किस उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी। वास्तव में श्रीमद भागवत भगवान से अभिन्न है। इदं भागवतम नाम पुराण ब्रह्म समितम है ना, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि ही कि भागवत जो है इदं भागवतम नाम ये श्रीमद भागवत का जो ग्रंथ है पुराण ब्रह्म समितम ये साक्षात भगवान है, इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये भगवान का अवतार है वास्तव में, इसलिए श्रीमद भागवत की पूजा होती है। श्रीमद भागवत को कई मंदिरों में स्थान देते हैं जहां श्रीमद भागवत को हर रोज हार पहनाया जाता है और श्रीमद भागवत को लोग आके फिर प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार से अर्थ विग्रह है भगवान की मूर्ति है और उसकी पूजा होती है, लोग आके दर्शन लेते हैं और अपना माथा टेक कर चले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान के श्री विग्रह से, उसी प्रकार से कई मंदिरों में इस श्रीमद भागवत जो है इसको एक रखा जाता है, विशेष स्थान दिया जाता है, आसन दिया जाता है और उस जगह लोग आकर अपना माथा टेकते हैं और उसका दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं श्रीमद भागवत से, क्योंकि ये श्रीमद भागवत ग्रंथ जो है ये केवल साधारण पुस्तक नहीं है। पुस्तकें तो कई हैं इस संसार में, किसी पुस्तक की किताब में जाइए आपको हजारों की संख्या में पुस्तकें मिलेगी, लाइब्रेरी में जाइए, लेकिन ये श्रीमद भागवत ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए लोग इसे बहुत ख्याल से रखते हैं। इसलिए ये श्रीमद भागवत भी हमारे घरों में जब हम रखते हैं तो ख्याल से रखना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रीमद भागवत ब्रह्म संहितम है, साक्षात भगवान है ये। उत्तम श्लोक चरितम, ये उत्तम श्लोक मतलब कौन है, भगवान श्री कृष्ण जिनका गुणगान उत्तम श्लोक से होता है, अच्छे से अच्छे मधुर कविताओं से होता है, ये इनका वर्णन जो शास्त्र में है उत्तम श्लोक चरितम वो है ये श्रीमद भागवत। और चकार भगवान ऋषि ही, इसकी रचना किसने की है, भगवान ऋषि ही, साधारण ऋषि ने नहीं की है, साक्षात भगवान ऋषि है वो। भगवान ऋषि का मतलब है कि ये ग्रंथ तो भगवान का अवतार है ही, लेकिन इसकी रचना करने वाले भी भगवान के अवतार है, वेद व्यास जी तो भगवान के अवतार है। तो देखिए कितनी सुंदर बात है, भगवान के अवतार ने और एक भगवान के अवतार की रचना की, दोनों अवतार हैं, वेद व्यास भी अवतार हैं और श्रीमद भागवत भी अवतार हैं। एक है ऋषि अवतार भगवान ऋषि ही और दूसरे हैं शास्त्र अवतार भागवताम सताम, सताम मतलब वो भक्त जो हृदय में पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, तो श्रीमद भागवत ऐसे सताम निर्मत्तराणाम सताम ऐसे लोगों के लिए वास्तव में बनाया गया है, इसलिए उसको परमहंस संहिता कहते हैं। तो कोई भी साधारण व्यक्ति श्रीमद भागवत को समझ नहीं सकता है, जब तक कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं होता वो श्रीमद भागवत को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि श्रीमद भागवत अचिंत्य है, ये भक्ति के माध्यम से ही लोग समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जब तक व्यक्ति भक्त नहीं होता वो गीता को समझ नहीं सकता है ना। स एवाय मया तेद योग प्रोक्त है पुरातन, स एवाय मया तेद योग प्रोक्त पुरातन, ये जो ज्ञान जो लुप्त हो चुका था अभी मैं पुनः तुम्हें ये दे रहा हूँ, भक्तों से मैं सिखा चेती रहस्य मेरे उत्तमम, कि इस वक्त ये जो तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। अगर कोई और व्यक्ति ऐसे पढ़ेगा जो भक्त नहीं है तो उसके लिए ये ज्ञान जो है परम रहस्य बनेगा, वो कभी समझ नहीं पाएगा कि ये क्या चीज है। तो जब साक्षात भगवत गीता को लोग जो अभक्त हैं वो समझ नहीं पाएंगे तो ये कैसे संभव है कि कोई अभक्त श्रीमद् भागवत को समझ पाएगा। जब भगवत गीता को कोई अभक्त नहीं समझ पाएगा तो ये कैसे संभव है कि वो श्रीमद् भागवत को समझ पाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी की तरह है। भगवत गीता वो एक हाई स्कूल ग्रंथ के समान है, लेकिन जब हाई स्कूल को पास करके हम ग्रेजुएशन में जाते हैं उस समय श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये परमहंसों के लिए है, भगवान के अवतार ने इसको इसकी रचना की है और साक्षात ग्रंथ भी भगवान का अवतार ही माना जाता है। तो इसका उद्देश्य क्यों है? ये भगवान का एक से एक अनुकंपा का अवतार है। भगवान ने अवतार इसलिए लिया है भागवत के रूप में कि जनसाधारण के ऊपर कृपा करके ये अवतार लिया है। अनर्थ प्रशमन साक्षात भक्ति योगम अधोक्षरे, ये अनर्थ उपशमम, अनर्थ जो हमारे हृदय में है, अनर्थ मतलब जो नाना प्रकार के कलमश हमारे हृदय में है, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उपशमम इनको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ये ग्रंथ बनाया गया है। अनर्थ पशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षरे, भक्ति योग से इसका नाश करने के लिए ये ग्रंथ बनाया गया है। चकार भगवान सताम पतही, तो ये जो ग्रंथ है वेद व्यास जी ने इसको बनाया है हमारे अंदर जो भी अनर्थ हैं उनको नष्ट करने के लिए। तो ये उद्देश्य है। इस वक्त सारे जो प्राणी हैं वो संसार में बहुत ही दुखी अवस्था में इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बताया गया है ताकि वो इस ग्रंथ का श्रवण कीर्तन करें, इसका पान करें और अपने अंदर जो कष्ट हैं उसको समाप्त कर दें। तो वास्तव में ये श्रीमद् भागवत का केवल श्रवण करने से हमारे अंदर जो भी कलमश है, जो भी इंप्योरिटी, जो भी मल है वो दूर हो सकता है। तो यहां तात्पर्य इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि लोग इस प्रकार से अज्ञानवश भौतिक कार्य में लगे हैं जो कि उनका दुख का कारण है, ये ग्रंथ की रचना की गई है। तो कभी हमारे मन में ये प्रश्न हो सकता है कि श्रीमद् भागवत में बताया है निर्मत्साराणाम सताम कि ये ग्रंथ जो है वो उन लोगों के लिए है जो निर्मत्साराणाम है, जिनके हृदय में बिल्कुल कोई ईर्ष्या भावना नहीं है, और दूसरी ओर यहां बताया गया है कि उन लोगों के लिए किया गया है जो वास्तव में पीड़ा से, भौतिक पीड़ा से तड़प रहे हैं। तो सत्य क्या है? वास्तव में ये उन लोगों के लिए है जो अपने पीड़ित अवस्था से मुक्त होना चाहते हैं, जो निर्मत्साराणाम बनना चाहते हैं। तो इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम मोह अहो रसिका भुवि भावुका, तो भागवत किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो अभी भी रस का पान कर रहे हैं, जो भावुक हैं, और उनके लिए जो रस का पान करना चाहते हैं, दोनों के लिए है। इसलिए श्रीमद् भागवत एक कृपा शास्त्र है और ये रस शास्त्र है। इस शास्त्र में हमें रस का पान कराया गया है। हम देखते हैं कि संसार में लोग भौतिक रस का पान करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति संसार में रस का पान करना चाहता है ना? ये रस क्या चीज होता है? रस का मतलब वो आनंद जो या वो सुख जो कि हम हर एक कार्य से प्राप्त करना चाहते हैं। अभी हर एक कार्य जो भी हम करते हैं कोई उद्देश्य से करते हैं, बिना उद्देश्य से नहीं करते हैं। अगर कोई कार्य करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम उस कार्य से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम उस कार्य से कोई चीज प्राप्त नहीं करते तो वो कार्य क्यों करते? आप यहां मंदिर में आए हैं कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं, कोई उद्देश्य से आए हैं। आपके बिजनेस में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, कोई कारण से जाएंगे, कुछ चीज प्राप्त करने के लिए जाएंगे। परिवार की सेवा करेंगे, कुछ उद्देश्य से करेंगे। आपके मन में यह इच्छा है कि मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूं। हर जगह संसार में लोग सेवा में लगे हुए हैं, हर प्रकार की सेवा। कोई अपने समाज की सेवा करता है, कोई अपने परिवार की सेवा करता है, कोई अपने गिराए की सेवा करता है, कस्टमर्स की सेवा करता है, कोई अपने परिवार की सेवा करता है, कोई अपने शरीर की सेवा करता है। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में सेवा में लगा हुआ है और उसी सेवा में लगा हुआ रहता है और सेवा को छोड़ता नहीं है। क्यों ऐसे? अगर कोई सेवा से बहुत दुख मिलता हो तो आदमी छोड़ देगा। मान लीजिए कोई आदमी सर्विस कर रहा है और वो सर्विस में नौकरी को भी सर्विस कहते हैं ना, इसके अर्थ में वो भी सेवा है कोई, हालांकि वो करना नहीं चाहता, इसलिए मैं सर्विस कर रहा हूं। तो वो सर्विस कर रहा है, सेवा कर रहा है, क्योंकि इतने दुख होते हुए भी उससे वो कुछ रस प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब है जो भी सेवा हम संसार में करते हैं, सीटी से लेकर हाथी से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राजा तक, हरेक व्यक्ति जो भी सेवा करते हैं वो रस की अभिलाषा करते हुए करते हैं। कोई न कोई रस प्राप्त करना चाहते हैं। वो रस का मतलब क्या है? रस का मतलब है कि एक प्रकार का सुख जो कि हम हरेक कार्य से, हरेक सेवा से प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये है भौतिक रस, हमारे परिवार की सेवा में, हमारे कस्टमर्स की सेवा में, हमारे देश की सेवा में, हमारे शरीर की सेवा में, ये सारी सेवाएं हैं। इनसे जो हमें सुख मिलता है, तथा कथित सुख मिलता है, ये वास्तव में इसको भौतिक रस कहते हैं। लेकिन ये रस कैसा है? अद्यंत वंत कौन थे नतेश्वर मते बुधा, वो ऐसा जिसकी शुरुआत होती है, जिसका अंत होता है, जो दुख का कारण है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे रस का पान नहीं करना चाहते हैं, ऐसे रस से, रसपान से दूर होते हैं। जिस प्रकार से शराब का अड्डा होता है, वहां जाके लोग भी एक रसपान करते हैं ना, वो तो भी रस है, एक प्रकार का रस। वहां जाके लोग उसका पान करते हैं जो उस प्रकार के इच्छा रखते हैं। और दूसरी ओर यहां भक्त हैं जो मंदिर की ओर आते हैं और अलग प्रकार के रस का पान करना चाहते हैं। तो दोनों रस हैं, लेकिन जैसे हमारी रुचि है उस प्रकार से वैसे रस का पान हम करना चाहेंगे। तो जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो भौतिक रस का पान करना चाहते हैं। तो भौतिक रस में बिल्कुल दुख ही दुख है, जैसे यहां तात्पर्य में बताया गया है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसे रस के सागर में जाएं जहां वो रस का जो बढ़ता रहे और इसका कभी अंत न हो, और इसका स्वाद और भी मीठा होता रहे। है कोई ऐसा सागर? है कोई ऐसा पदार्थ इस संसार में जिसके रस का पान करने से ज्यादा हमारे रस का स्वाद बढ़ता जाए? इस संसार में तो ऐसा कोई संसारी चीज कोई नहीं है। लेकिन इसको कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रस के अमृत का सागर है ये, जिसमें भक्त जो है वो स्विम कर सकता है, जो अपने आप को डुबोकर इसका आनंद हर पल हर बूंद इसका स्वाद ले सकता है। यह है भक्ति रसामृत सिंधु। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में समझाते हैं कि कई लोग होते हैं जो भगवान से एक होना चाहते हैं, भगवान से लीन होना चाहते हैं। तो वो ऐसे हैं जैसे जो नदियां हैं जो समंदर में जाकर मिल जाती हैं और अपने व्यक्तित्व को खो बैठते हैं, अर्थात अपने इंडिविजुअलिटी को शून्य कर बैठते हैं, व्यक्तित्व को रखते हैं, इंडिविजुअलिटी को रखते हैं, अपने व्यक्तित्व को शून्य नहीं बनाते हैं। तो सागर का आनंद लेते हैं और साथ साथ सागर की सेवा भी करते हैं, सागर के शरण में रहते हैं, ये हैं भगवान के भक्त। देखिए एक बहुत सुंदर बात है, बड़ा जहाज है, बहुत बड़ा जहाज, जब कोई भीषण एक तूफान होता है सागर के बीच में, तो सबसे बड़ा जहाज भी हो उसकी हालत क्या हो जाएगी? जहाज तो इधर तो यहां वहां हो जाएगी, कभी उल्टा भी हो सकता है जहाज, डूब भी सकता है जहाज, लेकिन एक छोटी मछली है, मछली आसानी से तैर रही है यहां से वहां, बड़े से बड़े तूफान भी हो जाए लेकिन मच्छी आसानी से तैर सकती यहां से वहां, बड़े से बड़े तूफान में मछली को कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों? एक जहाज में और मछली में अंतर क्या है? वास्तव में जहाज इतना बड़ा है, शक्तिशाली है, इतने इंजीनियर लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने इसका डिजाइन किया हुआ है और इतने सारे इसमें सेफ गार्ड लगे हुए हैं, फिर भी ये जो इतना बड़ा जहाज है, इतने करोड़ों रुपए से बनाया हुआ, वो डूब जाता है तूफान में, लेकिन मच्छी आराम से, आसानी से, आनंद से घूमती रहती है पानी में, तैरती रहती है। क्यों? फर्क क्या है दोनों में? क्या कारण बताएंगे आप? हाँ, स्वाभाविक है। हाँ वो तो है। हाँ, मछली ने सागर को शरण लिया हुआ है और इसीलिए वो सागर में रहकर भी, अलग रहते हुए भी सागर की सेवा कर सकती है और इसलिए आनंद में रह सकती है। लेकिन जो बड़ा जो जहाज है वो अलग से जाने का प्रयास कर रहा है अपने ही दिशा में, मछली लहरें को जहां लहरें ले जाती है वहां जाती है मछली, लेकिन सागर जो जहाज है वो अपनी दिशा में ले जाते कि मैं इस दिशा में जाना चाहता हूं, और उसी दिशा में जाते भले सागर वो दूसरी दिशा में जा रही हो, तो इसलिए सागर उसे आसानी से तोड़कर उसे डुबा सकता है और फिर वो सागर में मिल जाता है। तो इसी प्रकार से ये भक्त होते हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु में हमेशा मछली की तरह रहते हैं, तैरते रहते हैं और सदा इस रस के अमृत का पान करते रहते हैं, इसलिए आनंद की अवस्था में सदा रहते हैं। लेकिन जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, जैसे नदियां आकर उसमें मिल जाती हैं, तो उस प्रकार से उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई आनंद नहीं रहता है। प्रभुपाद एक जगह बताते थे कि जो लोग ये भक्ति रस में, ये भागवत रस में जो रमना नहीं चाहते हैं, वो तो बिल्कुल दुर्भाग्यशाली है। जो लोग केवल भगवान के निराकार स्वरूप में रुचि लेते हैं और इनमें मिल जाना चाहते हैं, उनको तो रस का पान नहीं मिलता है। जैसे एक बूंद मिल जाता है तो उससे क्या संतुष्टि होगी हमें? उसके हिसाब से एक पूरा सागर पड़ा हुआ है, अमृत का सागर, और हमें पूरा निमंत्रण दिया गया है, आइए इसका पान कीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, इसमें कोई बीए एमए पीएचडी की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आके इसका पान कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं जाकर इसका पान करता तो वास्तव में ये बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। यहां इसी बात को प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं। तो भक्ति रस का के अमृत के तुलना से के हिसाब से अगर जो निराकारवादियों के जो रस उनको प्राप्त होता है उसकी तुलना की जाए, तो निराकारवादियों का रस एक बूंद के समान है और भक्ति रस का सागर जो है, सागर जो है वो सागर के समान है, इतना बड़ा होता है वो। और जो निराकारवादी हैं, जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि वो बांबू से उसको चीस कर उसमें से रस निकालना चाहते हैं, बांबू रस पीते हैं ज्ञानी लोग, है ना? अभी हम देखते हैं कि रस्ते में वो लोग गन्ने का रस निकालते हैं, मशीन में डालते हैं और फिर अति स्वादिष्ट मीठा मीठा गन्ने का रस निकलता है और पीने से बड़ा आनंद आता है। लेकिन उसमें आप वो बांबू डालिए और बांबू का रस बनाइए, वो पीजिए, उसमें क्या स्वाद मिलेगा हमें। तो ज्ञानी लोग जो रस पान करते हैं वो बांबू का रस पीते हैं, और जो भक्त लोग जो रस पान करते हैं वो गन्ने के रस के समान है, बहुत मीठा होता है। और इसके अंदर गन्ने के रस में भी थोड़ा नमक डालेंगे, उसके ऊपर फिर थोड़ा काली मिर्च थोड़ा डालेंगे और थोड़ा कर्पूर डालेंगे, और इस प्रकार से थोड़े आप चीजें डालते रहेंगे, इसका स्वाद बढ़ते रहता है। शुक्र मुखाद अमृत द्रव संवितम, और भी स्वादिष्ट होता है। जैसे भक्तों के मुख से और निकलता है वैसे और भी ये गन्ने का रस स्वादिष्ट होते जाता है। लेकिन गन्ने के रस, वो जो बांबू के रस में आप क्या डालेंगे, जितना भी आप डालेंगे वो कड़वा होता जाएगा और भी, है ना। तो अब निकलता भी होगा तो पता नहीं, वैसे भी कम निकलता होगा, लेकिन लोग फिर भी इसको चूसते हैं, है ना। वो क्या है, पुनः पुनः चर्वित चरवणानाम, प्रहलाद कहते हैं ना कि बार बार इसको चूसते हैं लोग, लेकिन इसमें रस नहीं निकलता है। जैसे गन्ने का रस का जो उसको चबा चबा कर वो मशीन में डाल डाल कर वो कैसे डालते हैं, वो भी पैसा बचाना चाहते हैं ना, तो 10 बार उसको घुसाएंगे वो मशीन में और फिर उसको फेंक देते हैं, और फिर उसको कोई उठा के चबाएगा तो बेचारा उसमें क्या रस प्राप्त करेगा। तो उसी प्रकार से वो संसारी लोग हैं, जो ये संसार के रस को प्राप्त करना, लेकिन रस तो रहा भी नहीं इसमें। आपने चबा लिया, इतने 84 लाख योनि में भ्रमण करके आपने चबा लिया, जो भी रस था, जो भी थोड़ा बहुत एक दो बूंद थे उसमें आपने पी लिए, अभी और रस कहाँ बचा है। तो इस रस के पीछे आप क्या भाग दौड़ कर रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ सागर पड़ा है, वो सागर रस का सागर, अमृत का सागर पड़ा है, उसको छोड़कर कोई बांबू के पीछे पड़ा है, तो कोई वो गन्ने के रस को जो चबाए हुए टुकड़े हैं उसके पीछे पड़ा है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे सब दुर्भाग्यशाली हैं। तो हमें केवल सर मुड़कर देखना है कि यहाँ इतना सुंदर सागर है, रस का पान इसको करना है, जाकर सिर्फ इसके कूद जाना है अंदर, बस कूद देना है और फिर इसका रस पान करते रहना है। कितना अच्छा है, कितना आसान है ये तरीका। तो ये है श्रीमद् भागवत, और इसलिए यह मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि करुणा से वास्तव में जन साधारण के कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की गई है। तो हमें भी इस ग्रंथ का रस पान करना चाहिए, और हमारे जीवन में जो भी अनर्थ हैं इनका निवारण हमें करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न इत्यादि। यही बात को मैंने प्रवचन में भी मैं कह रहा था कि श्रीमद् भागवत तो रस शास्त्र है और कृपा शास्त्र है, सबके लिए कृपा दे रही है। ये तो विशेष कलयुग के लिए है। कलयुग में लोग तो ऐसे ही होने वाले हैं। जब सब ऋषि मुनि एकत्र हुए थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से कई प्रश्न किए थे, 6 प्रश्न किए थे। उनमें से एक प्रश्न ये भी था कि अब श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं, तो अब इस वक्त हमें धर्म ज्ञान इत्यादि कहाँ से मिलेगा, वो कौन धर्म का पालन करेगा, हमें मार्गदर्शन कौन कराएगा। जब कृष्ण चले गए हैं तो ऋषि मुनियों ने क्या जवाब दिया? कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाद भी सह कलौ नष्ट दृशा मेष पुराणार्को धुनोदित। उन्होंने कहा कि कृष्ण स्वधाम वो स्वधाम अपने धाम उपगते चले गए हैं धर्म ज्ञान आज भी सह धर्म को ज्ञान को इत्यादि इन सब को साथ में लेकर चले गए हैं। कलो नष्ट दृशाम एष कलयुग में जो हमारी दृशा नष्ट दृशा है अर्थात हमारी दृष्टि जो है बिल्कुल नष्ट हो चुकी है ऐसे अवस्था में ऐसे अंधकार की अवस्था में कलो नष्ट दृशाम एष पुराण ये पुराण अर्कह मतलब सूरज अभी उदित अभी अभी इसका उदय हुआ है ऐसे लोगों के लिए जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है अंधकार के लिए तो ये विशेषतः कलयुग के अज्ञान में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए है जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं विशेषतः उनके लिए है। लेकिन इसका पान करने के लिए वास्तव में जो पात्र हैं वो हैं शुद्ध भक्त भगवान से निर्मत्तराणाम सताम तो है सबके लिए केवल हमें यह योग्यता होनी चाहिए कि सुनना चाहिए हमें आकर भगवान के भक्तों में बैठकर के बीच में बैठकर सुनने की इच्छा रखनी चाहिए बस। अगर इतना हम करेंगे जैसे बताया जाता है कि घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हैं तो उसको पिला नहीं सकते है ना तो कोई व्यक्ति अगर आए और यहां बैठकर इसका पान करे तो बस बहुत है। हमारी प्रेरणा ये प्रयास ये होना चाहिए उनको आकर यहां बिठाएं फिर उनको पान करना नहीं करना वो उनके ऊपर है लेकिन अवसर सबको प्राप्त है ये रस पान करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल श्रीमद् भागवत तो रस अमृत का सागर है। हाँ सही है आपका कहना है कि जो जैसा व्यक्ति है उसके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के हिसाब से वो श्रीमद् भागवत का रसपान कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे जिस हद तक एक मरीज पीलिया की बीमारी से मुक्त हो उस हद तक वो गन्ने के रस का मिठास का स्वाद पहचान पाएगा। है गन्ने का रस मिठास मीठा वाला लेकिन जितना पीलिया की बीमारी हमारे अंदर है उस हद तक वो हमें कड़वा लगेगा। मिठास तो आ रहा है लेकिन कम लेकिन जो जितना ज्यादा मुक्त हो चुका है पीलिया से उसको गन्ने के रस से ज्यादा स्वाद महसूस होगा और जब पूरी तरह से बीमार हो जाएगा वो तो उसको बड़ा आनंद आ रहा है बड़ा मजा आता है उसमें और फिर वो नमक ये वो डालता रहता है स्वाद बढ़ाते रहता है उसको। तो उसी प्रकार से मुक्ति की अवस्था मतलब क्या है? मुक्ति की अवस्था मतलब वास्तव में पूरी तरह से ये बीमारी को पीलिया की बीमारी को खत्म करना अर्थात अनर्थों को खत्म हो जाना। ऐसी अवस्था में नमक डालना वगैरह चालू हो जाएगा मतलब और भी स्वाद बढ़ता रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां। जब वास्तव में हम ब्रह्मभूत के स्तर में आ जाते हैं तब वास्तव में भक्ति शुरू होती है शुद्ध भक्ति शुरू हो जाती है। तो जितना हम अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं उतना भागवत का रसपान हम कर पाएंगे भागवत उतना ज्यादा मीठा लगेगा हमें और हरेक कोना भागवत का मीठा है। प्रति अक्षरे प्रति श्लोके नाना अर्थ कहे हरेक श्लोक में हरेक अर्थ में अलग अलग प्रकार के अर्थ होते हैं हम निकाल सकते हैं अनंत है श्रीमद् भागवत। तो जितना ज्यादा पान करेंगे उतना ज्यादा रस निकलेगा इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि जैसे अभी गन्ने का रस का उदाहरण दिया कि गन्ना का रस इतना पी लिया फिर पी लिया उसके बाद खत्म हो गया, लेकिन भागवत ऐसा गन्ना नहीं है। भागवत ऐसा जितना उसमें से रस निकालेंगे उतना और रस भरता जाएगा उसमें, अनंत है श्रीमद् भागवत। तो सीमा भागवत की नहीं है, सीमा हमारी है पान करने के लिए, इसलिए उसको सागर कहा है। भक्ति रसामृत सिंधु सागर होने के नाते इसकी कैपेसिटी हमें देने के लिए अनंत है। कैपेसिटी योग्यता पात्रता हमारी लेने के लिए सीमित है, यही कष्ट है। नहीं, निवृत्ति अगेंस्ट ये शारीरिक दृष्टि से, जैसे आप बता रहे हैं कि हम संसार एक दिशा में जा रहा है, हमारा शरीर हमें उसी दिशा में खींच रहा है, हमारा मन भी हमें उसी दिशा में खींच रहा है, लेकिन आत्मा की आवाज को अगर हम सुने, कृष्ण की आवाज को सुने, शास्त्रों की आवाज को सुने, तो हमें उल्टी दिशा में जाना चाहिए। उसको कहते हैं निवृत्ति। तो निवृत्ति मतलब शरीर और संसार के विरुद्ध जाना, लेकिन आत्मा के सही दिशा में जाना। आत्मा के लिए स्वाभाविक है, जो शरीर के लिए अननेचुरल है वो आत्मा के लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है, और जो शरीर के लिए स्वाभाविक है आत्मा के लिए अननेचुरल है ना। शुरू शुरू में नहीं है, इसलिए हमें सीखना है ना। पहले कोई तैरना सीखता है तो कैसा बड़े कष्ट में आता है। आपने देखा है किसी को सीखते हुए पानी पीता है, फू 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 करता है बाहर आके, फिर कान में पानी, आंख में पानी, इसमें पानी, बेचारे का और नहीं सीखूंगा चले जाऊंगा, बड़ा कष्ट होता है उसको पहले सीखता है ना। इसलिए तो सिखाने वाला चाहिए ना। लेकिन एक बार सीख जाता है फिर अंडर वाटर जाएगा और डाइविंग भी करेगा, सब करेगा, वो अलग अलग स्ट्रोक्स करेगा, बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक करेगा, लेकिन शुरुआत में कष्ट होता है क्योंकि जमीन से आया, अचानक पानी में जाएगा तो पानी ठंडा होगा तो और कष्ट होगा। तो जैसे जैसे हम निपुण होते जाएंगे भक्ति में, वैसे वैसे इस सागर में रहने के लिए हम अकस्टम हो जाएंगे, उस हैबिट पड़ जाएगा, समझ पाएंगे कि हाँ ये ठीक है, वातावरण है वास्तव में हमारा स्वाभाविक वातावरण। लेकिन इतनी दूर हम जमीन पर रहे हैं कि भूल चुके हैं, है ना। तो धीरे 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 से हमें आना है इसमें। प्रश्न यह है कि पहले से दसवें स्कंद तक हमें धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। उद्देश्य यह है कि दसवें स्कंद तक पहुंचने तक हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण लीला का रसपान हम कर पाएंगे। लेकिन बात यह है कि हमें सही ढंग से पढ़ना चाहिए, सही व्यक्ति से सुनना चाहिए, सही चेतना से इसको स्वीकार करना चाहिए और सतत इसका चिंतन मनन करना चाहिए। तो ये सब अगर हम रोज करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो पूरा हो गया, है ना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। नित्यं भागवत सेवया, रोज इसका श्रवण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, श्रवण करना, ये भी हमारे लिए एक तपस्या है। आना, श्रवण करना, ठंडी हो, गर्मी हो, जो भी हो, मच्छर हो नहीं हो, है ना, इसका भजन कीर्तन करना, श्रवण करना, ये एक हमारे लिए नियम है। तो इसका रोज जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे धीरे 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 से, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे अंदर जो भी अभद्र चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, वो नष्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे भक्ति भवती नैष्ठिकी, निष्ठा की भक्ति, निष्ठा निष्ठा से भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे शनै शनै इसको होता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो बीमार है दवाई लेना शुरू करता है, ऐसा नहीं कि जैसे पहली बार एक डोज ले लिया एक दिन में तो अचानक ठीक हो जाएगा, नहीं। जैसे जैसे वो सही ढंग से दवाई लेता है, डॉक्टर के जो कहा है उसको फॉलो करता है, तो तीन चार दिन में, एक हफ्ते में, दस दिन में हैं, वो ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत अगर हम हर रोज इसका श्रवण कीर्तन करते रहें और महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका निरंतर जाप करते रहें और बाकी जो नियम हैं इनको फॉलो करते रहें, तो हमारे अंदर भी जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे। ठीक है, आखिरी प्रश्न। सबको भूख भी लगी है शायद। चलो ना 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 इसे इसे जब प्रश्न किए जा रहे थे सुत गोस्वामी को, और सुत गोस्वामी ने साधु साधु कहा, दोनों एक दूसरे को कहते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रवक्ता हैं, जो बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उसको सुनने वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भागवत कथा इतनी अच्छी है और आपके मुखारविंद से आ रही है तो और अच्छा लग रहा है, आपने कितनी अच्छी बात कही साधु साधु है? तो सुनने वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जब प्रश्न करते हैं सुनने वाले, तो प्रवक्ता हैं जो बोलने वाले हैं वो कहते हैं साधु साधु वाह कितना सुंदर प्रश्न किया आपने, है ना, ये इसके रस को आपने बढ़ाया है और इसने सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे भी बोलने की प्रेरणा मिलती है। अगले सब लोग क्लास में सोए हुए हो तो बोलने वाला भी बेचारा उसको उत्साह नहीं होगा ना, तो बोलने वाले एकदम उत्सुक हैं सुनने के लिए, आतुर है, और फिर सुंदर प्रश्न करते हैं तो बोलने वाले को भी उत्साह हो जाता है, बोलने वाला उत्साह से अच्छी तरह से बोलता है तो सुनने वालों को भी उत्साह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे का पोषण होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भक्ति का पोषण होता है ना। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को साधु साधु कहते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, सब लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये है भागवत कथा का तरीका, है ना। अरे वो ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.